ओम शांति। आप सभी बाबा के बच्चे स्पिरिचुअली चार्ज होने के लिए आए हैं। यहां डॉक्टर्स की क्या आवश्यकता है सोचते होंगे, डॉक्टर क्या करेंगे इधर। परंतु डॉक्टर्स और गॉड दोनों का बड़ा गहरा संबंध है। लोग डॉक्टर्स को ही नेक्स्ट टू गॉड कहते हैं। साथ साथ हेल्थ और अध्यात्म भी दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। हजारों साल पहले महर्षि पतंजलि हमारे भारत में लोगों को योगासन सिखा के गए थे, आप सभी जानते हैं। क्यों? योग ये मेंटल हेल्थ के लिए, आसन दीज आर कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, पोस्चुरल एक्सरसाइज, वो शरीर के लिए। आध्यात्मिक प्रगति में तन और मन दोनों को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। अगर तन ठीक नहीं है तो आध्यात्मिक प्रगति में, चाहे आप योग लगाने में, सेवा करने में, किसी भी पुरुषार्थ करने में, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बीमारी है, सारा दिन हाय हाय करते रहेंगे, शारीरिक कष्ट दर्द लेके कैसे कर सकते हैं। संगम युग में जो निरोगी है, ये बाबा का महावाक्य है, संगम युग में जो निरोगी है वो बहुत भाग्यवान है। क्योंकि आप देखे होंगे ब्रह्मा बाबा को 90 उम्र में भी बाबा पूरा एकदम अर्ध पद्मासन में एक राजा की तरह ऐसे बैठ के चार चार घंटा, पांच पांच घंटा बाबा बैठ जाते थे। उनके सामने 50 साल उम्र वाले आके बैठ नहीं सकते थे, ऐसे ऐसे होते थे, उनको शर्मिंदा होना पड़ता था। एक अच्छा साधक उसके बैठक से ही पता चलता है। अभी ये सोफा, ये चेयर, ये कुर्सियां सब अभी देख रहे हैं हम। जब बाबा थे, मम्मा थे हिस्ट्री हॉल में, वही संदलियां आज तक भी है, आप जाके देख लीजिए। पीछे कोई आधार नहीं है, कोई टेका नहीं है, एक भी कुर्सी सोफा नहीं था। दादी प्रकाशमणि से लेके सब कोई नीचे बैठना पड़ता था, सब नीचे बैठते थे। जगदीश भाई कहते थे हम सब छोटे बच्चे की तरह नीचे बैठते थे। मम्मा पापा आके बिना सहारा लेके एकदम संदली पे बैठ जाते थे ऐसे। तो एक अच्छा साधक उसके बैठक से पता चलता है। आज हम सभी अनेक साधनों के ऐसे वशीभूत हो चुके हैं कि शरीर ऐसा हो गया है, बात मत पूछिए। तो संगम युग में सदा निरोगी रहना बहुत एक भाग्य की निशानी है। मैं यहां सौभाग्य कहूंगा, 1986 में पहली बार मधुबन आया था। उन दिनों में ना ज्ञान स्वरूप था, ना हॉस्पिटल, ना शांति, ना कुछ, ना खाली पांडव होनी था। मैं उतरते ही मैं कहा, हे प्रभु, मेरा सारा जीवन यहां बीते तो कितना अच्छा होता। और बाबा ने मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी। मैं गवर्नमेंट जॉब करता था, धक से रिजाइन करके 91 में जब हॉस्पिटल बना तब मैं रिजाइन करके आ गया। 30 साल हो गया ऑलमोस्ट। 30 साल में मैं एक दिन भी कभी बीमार नहीं हुआ, कभी हॉस्पिटल में एडमिट होना नहीं पड़ा। इतना ट्रैवल किया हूं, सारे वर्ल्ड, सारे कॉन्टिनेंट ट्रैवल किया हूं। पिछले 8 साल में 350 प्रोग्राम किया है सारे ऑल ओवर वर्ल्ड में। इतना ट्रैवल, इतना हेक्टिक, कभी एयरपोर्ट में, कभी प्लेन में, कभी ट्रेन में, कभी कहां कभी कहां, लेकिन अमृत वेला कभी नहीं मिस किया। मुझे कभी डायरिया, कभी जुखाम तक नहीं, कभी पैरासिटामोल की गोली भी नहीं खाया होगा। और आप मुझे अभी जैसे देख रहे हो, आप पूछ लीजिए हमारे पुराने मधुबन निवासी भाइयों को, मेरा वजन जितना था उतना ही है। और क्या चाहिए जीवन में? 30 साल यहां ऐसे बीत गया जैसे कि 30 दिन पहले मैं इधर आया था, ऐसा अनुभव हो रहा है। तो जीवन में कुछ तो अपने हाथ में है, कुछ अपने हाथ में नहीं है। बीमारियां आजकल दुनिया में, जब पांचों तत्व ही प्रदूषित है, जो खाते हैं प्रदूषित, जो पीते हैं प्रदूषित, जो हवा लेते हैं प्रदूषित, कौन कैसे कह सकता है कि मैं सदा निरोगी रहूंगा, कोई बीमारी नहीं होगी। आज डॉक्टर्स भी बीमार हैं। तो ये संसार में निरोगी रहना असंभव है, कोई नहीं रह सकता है। जब डॉक्टर्स खुद बीमार हैं, मेरे 4 क्लासमेट्स तो जा चुके हैं ऊपर, मैं भी शायद बाबा के पास नहीं आता, मैं भी 2-4 स्टेंट लगा के घूमता कि मैं भी ऊपर जाता, कभी क्या पता। ये संसार ऐसा है, ये असार तमोप्रधान संसार, यहां कैसे निरोगी रहें। और सिर्फ इस जन्म नहीं, भविष्य 21 जन्म के लिए निरोगी कैसे रहें। मैं आज आपको बहुत सुंदर विधि जो मुझे समझ में आई है, जब से बाबा के पास आया तब से जो मुझे समझ मिली है, मैं आपको शेयर करूंगा। आज बीमारियों का कारण क्या है, दुनिया में इतनी जो बीमारियां हो रही है इसका कारण क्या है। अगर मुख्य कारण देखा जाए, जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है, अर्थात विकासशील राष्ट्र है, हमारे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनको डेवलपिंग कंट्रीज कहा जाता है, इन देशों में बीमारियों का मुख्य कारण अस्वच्छता है, गंदगी है, चारों तरफ जर्म्स, बैक्टीरिया, भूताणु, जीवाणु, इन्फेक्शियस डिजीज कहा जाता है। यहां बहुत सारे मलेरिया, टाइफाइड, कॉलेरा, ये सब बीमारियां बहुत ज्यादा है जो जर्म्स के लिए पैदा होते हैं। और जर्म्स क्यों है, क्योंकि गंदगी है चारों तरफ। आप डेवलप्ड कंट्री जाएंगे, विकसित राष्ट्र जैसे अमेरिका है, वहां इतनी गंदगी नहीं है, स्वच्छ, क्लीन, क्लियर चारों तरफ। वहां और तरह की बीमारियां हैं, वहां मलेरिया, टीबी इतना नहीं है। हमारे देश में अभी बहुत ज्यादा, ये विकासशील राष्ट्रों में बहुत ज्यादा ये इन्फेक्शियस डिजीज के कारण लोगों का मौत हो रहा है। परंतु आजकल जो डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं, वहां बीमारियों का मुख्य कारण है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, अर्थात अणसंक्रामक बीमारियां, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कैंसर, ये सब एक दूसरे से फैलती नहीं है, ये बीमारियां हैं वहां। और वो बीमारियां हमारे देश में भी फैल गई है। तो वो बीमारियों का कारण क्या है, इन्फेक्शियस बीमारियों का कारण तो हम समझ गए, गंदगी चारों तरफ। हमारे देश देखो, जाओ रास्ता कैसे, लोग घर साफ करेंगे, सारे गंदगी सामने, रास्ते के सामने, घर के सामने। परंतु विदेश में एकदम स्वच्छ, नीट, क्लीन सब, तो भी बीमारियां। इसका मुख्य कारण है वहां लोगों की जीवन शैली बहुत बेकार, उनका खाना पीना, सोना जागना, उठना बैठना, बिल्कुल एकदम अव्यवस्थित जीवन, तो लाइफस्टाइल एकदम चेंज है। और वो बीमारियां आज हमारे भारत जैसे भी विकासशील राष्ट्रों में भी फैल गई है। वी आर ब्लाइंडली एडॉप्टिंग, फॉलोइंग द डेवलप्ड कंट्रीज, उनके जो गलत आदतें हैं हम सभी उसको नकल कर रहे हैं, जिसके कारण ये बीमारियां भी हमारे देश में, ऑलरेडी बीमारियां तो है लेकिन ये बीमारियां भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और आज दुनिया में डॉक्टर्स भी इन बीमारियों से सुरक्षित नहीं है। आज से 10 साल पुरानी बात मैं सुना रहा हूं, चेन्नई में एक प्रोफेसर रामचंद्रन है, उन्होंने भारत के लगभग 2,500 MD फिजिशियन को बुलाए और उनका ब्लड प्रेशर और शुगर चेक किए। आपको आश्चर्य लगेगा, 50% से ज्यादा डॉक्टर को ही डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है, तो बाकी लोगों को कौन ठीक करेगा, सोच लो। तो डॉक्टर्स आपको सदा निरोगी नहीं बना सकते हैं। और इन सब से जो शारीरिक बीमारियां तो बता रहा हूं, लेकिन शारीरिक बीमारियों का मूल कारण भी अगर देखा जाए, एक मेजर कारण है मानसिक बीमारियां। मन ठीक नहीं है तो उसका तन पर प्रभाव पड़ रहा है। मन में टेंशन है तो हाइपरटेंशन हो रहा है, माने हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है। किसको थोड़ा सा टेंशन है या देखो उसका बीपी बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, धड़कन बढ़ जाता है, शारीरिक बीमारियां शुरू हो जाती है। इसलिए आज डॉक्टर्स कहते हैं 90% से भी ज्यादा डिजीजेस आर साइकोसोमैटिक, अर्थात पहले मन से ये बीमारियां शुरू हो रही है, फिर तन पर उसका असर हो रहा है। और मन को कौन ठीक करेगा, कैसे करेगा? मन के लिए इलाज तो डॉक्टर के पास भी नहीं है, क्योंकि आजकल सो कॉल्ड डॉक्टर्स जो भी किसी भी पाथी के क्यों ना हो, दुनिया में सबसे ज्यादा सुइसाइड कौन कर रहे हैं जानते हैं? दुनिया में सबसे ज्यादा सुइसाइड करने वाले डॉक्टर्स हैं। तो आपको मन से स्वस्थ रहने के लिए कैसे वो विधि बता सकते हैं जब खुद ही स्ट्रेसफुल है? तो आज दोनों तन को और मन को कैसे ठीक रखें, इसके लिए कौन भला हमें रास्ता बताएगा? दुनिया में सबसे बड़ा सर्जन कौन है? सबसे बड़ा सर्जन, सुप्रीम सर्जन किसको कहा जाता है? भगवान को कहा जाता है, परमात्मा को कहा जाता है। जब हम बहुत डॉक्टर्स मुसीबत में आ जाते हैं, हम भगवान को, हे प्रभु आप ही बचाओ। अभी हमने देखा है, मैं बॉम्बे यूनिवर्सिटी से, टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट से एनेस्थेसियोलॉजी भी पीजी किया हूं। मैं यहां ग्लोबल हॉस्पिटल में 15 साल तक अकेला 4 ऑपरेशन थिएटर संभाला था। बॉम्बे में जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था उन दिनों में, मैंने देखा है बहुत बड़े बड़े डॉक्टर, लेकिन पसीने में लतर पतर हो जाते थे, इतना स्ट्रेस होता था, इतना टेंशन। सेंट्रली एयर कंडीशन थिएटर में वो भी कहते, ओ गॉड, ओ माय गॉड। कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, जीवन में कभी ना कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है, वो उस समय बेसहारा अनुभव करता है, उस समय हे भगवान करता है। आज कोई अगर भगवान को नहीं मानता है, मैं कहूंगा उसका ईगो, जिसके कारण वो भगवान को भले स्वीकार नहीं करता है, लेकिन जीवन में कभी ना कभी ऐसी परिस्थिति, ऐसी समस्या, ऐसी स्थिति आ जाती है, उस समय आदमी बिल्कुल बेसहारा फील करता है। कितने भी धन संपत्ति, महल माड़ी गाड़ी मोटर कुछ भी हो, कुछ काम में आना नहीं है। ऐसे समय पर ओ गॉड कहते हैं। हम सभी ने पता होगा, सभी को पता होगा, माइकल जैक्सन नाम सुने हैं? एक डांसर सिंगर था, वो 150 साल तक जीऊंगा सोच के कम 30 डॉक्टर को पैसा दे के रखा था, अपना बॉडीगार्ड जैसा, ताकि शरीर का हर प्रकार से शरीर को ठीक रखे। 150 साल तक जीऊंगा कहता था, 60 साल तक भी जी नहीं पाया, 60 साल तक भी नहीं जी पाया। तो डॉक्टर साहब को सदा निरोगी कैसे बना सकते हैं? तो सबसे सुप्रीम डॉक्टर कौन है हमको पहचानना पड़ेगा। सबसे सुप्रीम डॉक्टर कहो, सर्जन कहो, पहले जमाने में डॉक्टर तो कोई नहीं कहता था, वैद्य कहते थे। तो हम सभी को पता है शिव बाबा का एक नाम बैद्यनाथ है ना? नहीं, बैद्यनाथ सभी वैद्यों का नाथ है। वो जरूर संसार में आकर कुछ ना कुछ ऐसी विधि सिखाए होंगे, बताए होंगे, तभी तो उनका नाम बैद्यनाथ है, नहीं तो क्यों ऐसे? भगवान को ज्ञान का सागर कहा जाता है। क्यों? इतने साल तक हमने तो देखा बाबा कैसे रात रात 5 बजे हम जाके ओम शांति भवन में बैठते थे, दादी गुलजार जी आती थी, योग चलता था, रात रात बाबा जब की पधारमणी होती थी, दूसरे दिन सवेरे 6-7 बज जाता था, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर जैसे छलक रहा हो। मैं तो बैठ के पूरा सारा डायरी भर जाता था, बाबा का एक एक शब्द लिखता था। इतने सालों तक दुनिया में ऐसा कोई है पढ़ा सकता है? साकार रूप में, अव्यक्त रूप में, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। बाबा जैसा प्यार तो कोई दे ही नहीं सकता है सारे संसार में, इसलिए उनको प्यार का सागर कहा जाता है। लोग इसलिए महिमा करते हैं, तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के हम प्यासी हैं। क्योंकि अभी वो समय आने वाला है, देखना, जब लोगों को पता चल जाएगा कि यही भगवान की अवतरण भूमि मधुबन भूमि, ऐसा भीड़ मचेगा, ये मिट्टी को भी अपने सिर पे लगाने के लिए लोग तरसेंगे, कहेंगे ओहो प्रभु तेरी लीला परम अपार, हम वंचित रह गए। और जो बाबा के बच्चे पहले से ही बाबा से सब कुछ प्राप्त कर चुके हैं, उनसे नजर से निहाल होने के लिए भी भीड़ लगेगी। वो समय देर नहीं है, बहुत बहुत नजदीक। ये 4-5 साल देखना क्या होगा, ये क्लाइमेक्स से ड्रामा का आ रहा है, देखना क्या क्या होगा। उससे पहले जो बाबा से सारी शक्तियां, सारे ज्ञान, सारे गुण खजानों से संपन्न बने होंगे, वही विश्व के सामने, विश्व गगन में सितारों के रूप में चमकेंगे। तो आज दुनिया में कोई देहधारी डॉक्टर आपको सदा निरोगी नहीं बना सकता है, क्योंकि खुद ही ठीक नहीं है। हमको सदा के लिए निरोगी बना सकते हैं तन से और मन से। तन कितना भी अच्छा हो, लेकिन मन किसी का ठीक नहीं है तो थोड़े समय में तन भी बीमार हो जाएगा। तो तन को और मन को दोनों परिपूरक है, यू कैन नॉट नेग्लेक्ट एनीथिंग। अभी WHO का रिसेंट सर्वे है, आने वाले कुछ समय में बाय 2025 WHO प्रेडिक्ट करता है कि दुनिया में सबसे बड़ी स्वास्थ्य की समस्या होगी हमारी मानसिक बीमारियां, मेंटल इलनेस। ऐसी ऐसी समस्या, परिस्थिति, ऐसी उलझनें जीवन में आएगी, हर कोई पूरा ऐसा हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा, पूरा पागल हो जाएंगे। खाली अभी भी नेट बंद हो जाए, इंटरनेट बंद हो जाए, देख लेना कितने कैसे होंगे। सभी लोग ऐसे हो जाएंगे जैसे बिना पानी मछली तड़पती है ना, ऐसा हो जाएगा, क्या हाल होगा देख लेना। और हम सभी ग्लोबल हॉस्पिटल में रोज बाबा के महावाक्य पढ़ते हैं, अव्यक्त मुरलियां। अभी पढ़ रहे थे 80s की मुरली, हमारी रिवीजन चल रहा था, तो बाबा ने कहा ये आवाज की सेवा जो कर रहे हो, आवाज जब पूरा बंद हो जाएगा, डेड साइलेंस हो जाएगा, तब बाबा प्रत्यक्ष होगा। ये वेबिनार सेमिनार ये कहां तक, कब तक, ये भी सब बंद होने वाला है थोड़े दिन में, देखना। जिस दिन ये इंटरनेट बंद, सब बंद, दुनिया बंद हो जाएगी, ठप हो जाएगा सब कुछ, तो मानसिक बीमारियां बहुत बढ़ेगी। ये बाबा ने भी कहा है, ये WHO प्रेडिक्ट कर रहा है। तो आज भी बाबा ने कहा, बच्चे ड्रामा को देखो, अचल अडोल रहोगे, साक्षी दृष्टा होकर रहोगे, कुछ भी हो जाए आप एक स्थिति में रह सकते हो। बाबा ने हमको ड्रामा का ज्ञान दिया है, और मन को बुद्धि को एक सेकंड में कैसे एकाग्र करें, कैसे अशरीर बने, ये अभ्यास बहुत काल से सिखाया। जो ये सबके अभ्यासी होंगे, अंत में दुनिया में कुछ भी होता रहेगा, उनको कोई हिला नहीं सकेगा, अचल अडल एक रस रह सकेंगे, उनकी मानसिक स्थिति कभी डगमग नहीं हो सकती है। तो तन से और मन से दोनों निरोगी तो एक ही मात्र शिव बाबा ही कर सकते हैं हमको, और एक जन्म नहीं 21 जन्म के लिए, वही हमें स्वर्गीय सुख देने के लिए आए हैं। जो देवताएं, सब देवताओं की उम्र देखो 150 साल लगभग होगा, अकाल मृत्यु किसी की भी नहीं होगा, निरोगी काया, कंचन काया, इच्छा मृत्यु होगी, वहां कोई रोएंगे नहीं, पिटेंगे नहीं। तो ऐसा सुंदर जीवन अब भी अनुभव कर सकते हो। भविष्य कोई कहता है, चलो भविष्य किसने देखा, लेकिन मैं कहता अभी देखो, कोई अनुभव करे ना करे। मैं तो दिल से बाबा को दुआएं देता हूं, बाबा मैं सच बता रहा हूं, मैं बाबा के पास जब आया, एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में एज ए फिजिशियन जॉब कर रहा था, डेली 200-250-300 पेशेंट देखना। सरकारी नौकरी में कोई लाइन में तो आपके पास आएंगे नहीं एक के बाद एक, इतना भीड़ और लोगों के ऐसे व्यवहार, मुझे इतना स्ट्रेस था। मैं कहता था बहुत कम दिन में मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा कि हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। सच बता रहा हूं मैं, अगर बाबा के पास नहीं आता क्या होता क्या पता। तो बाबा ने मुझे अपना बनाया, हमारी बहनें मुझे पॉजिटिव थिंकिंग सिखाए, राजयोग मेडिटेशन सिखाए, जिसके कारण आज जो सुंदर जीवन अनुभव कर रहा हूं, सचमुच कितने जन्म तक भी बाबा का हम ये एहसान, ये कृपा, ये करुणा कभी चुक्त कर नहीं सकते। तो जो बाबा को पहचाना, बाबा को अपनाया, और बाबा जो श्रीमत हमें देते हैं, श्रेष्ठ मत देते हैं, उसी मत पर अगर हम चल रहे हैं तो बाबा बंधा हुआ है, बंधा हुआ है हमको ठीक रखने के लिए। आप सोचो तो सही, जब भट्टी थी 14 साल तक एक भी कोई डॉक्टर, इतने 400 बच्चे थे, बाबा कभी किसी डॉक्टर्स को बुला के किसी का ट्रीटमेंट नहीं कराया, और ये दम्मा के पेशेंट्स को छाछ पिलाया, सोचो तो सही, सब ठीक हो गए। अविनाशी सर्जन, सुप्रीम सर्जन साथ में है, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान, कुछ भी नहीं हो सकता है, सब ठीक हो जाएगा। एक पल, एक भरोसा, अंत में यही काम में आएगा। तो बाबा हमें क्या विधि बताते हैं, जो हम अगर अनुकरण करें तो सदा निरोगी रह सकते हैं, 21 जन्म इस जीवन में भी निरोगी और जन्म जन्मांतर भी निरोगी। अगर इस जीवन में कोई बीमारी आती भी है, बाबा कहते तुम्हारा कर्म भोग है, बहुत विकर्म किए हो तो भोगना पड़ेगा। लेकिन मैंने देखा है, जितना बड़ा महारथी, क्योंकि जन्म जन्मांतर हम राजा रहे हैं, खाली सतयुग त्रेता युग नहीं, जैसे ब्रह्मा बाबा भी द्वापर युग में विक्रमादित्य बने थे, राजा विक्रमादित्य रहे, ऐसे हम सभी बाबा के बच्चे द्वापर युग में भी अनेक जन्म आप राजा महाराजा रहे होंगे। और द्वापर युग में बुद्धि तो कैसे होगी, उस समय कभी कभी गलत डिसीजन भी लिए होंगे, और राजा का एक गलत डिसीजन से कितने लोगों का क्या क्या हो जाता है। और द्वापर युग में तो लड़ाई, युद्ध, एक दूसरे के हजारों संख्या में एक ही साथ मर गए लोग, कितने लोगों की बद्दुआएं, कितने जन्म जन्मांतर के क्या क्या बोझ सिर पर है, ये तो चुप्त करना पड़ेगा। लेकिन दुनिया, हम तो हॉस्पिटल में रहते हैं, देखते हैं, दुनिया वालों को जब बीमारी होती है कैसे हाय हाय करते रहते हैं, और बाबा के बच्चों को बीमारी है तो खुशी खुशी से, प्यार से, परिवार का सहयोग मिलता है, बाबा का मदद मिलता है, स्वयं की योग की शक्ति है, सूली से कांटा हो जाता है, बिल्कुल एकदम हंसते हंसते पार हो जाते हैं। तो अगर बीमारी आती भी है, क्योंकि इस संसार में कोई नहीं कह सकता है, सब कुछ जब प्रदूषित है, तमो प्रधान है, बीमारी आती भी है, चलो हमारे हिसाब किताब चुक्त होने के लिए आया, कोई बात नहीं। परंतु मैं तो कहूंगा कुछ गलतियां हम खुद करते हैं, जो हमारे हाथ में कुछ नहीं है अलग बात है। आप गाड़ी सेफली ड्राइव कर रहे हो, आप अपने रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहे हो, कोई आके लगा दिया तो आप क्या कर सकते हैं, आपके हाथ में नहीं है। लेकिन कुछ गलतियां हम खुद करते हैं, वो गलतियां अगर हम सुधार दें, मैं कहूंगा बहुत सारी बीमारियों से अभी भी बच सकते हैं, और जन्म जन्मांतर तो बचेंगे ही। तो बाबा हमें क्या विधि बता रहे हैं वो चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो आज जो विकसित राष्ट्र है, डेवलप्ड कंट्रीज है, जो बीमारियां हैं वो लाइफस्टाइल डिजीज है। तो बाबा कहते हैं मेरे बच्चे तुम स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल अडॉप्ट करो तो तुम 21 जन्म निरोगी रहोगे, इस जीवन में भी और 21 जन्म भी। वो स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल क्या है मैं आपको शेयर करूंगा। वो है सबसे पहला श्रीमद् बाबा की है, बच्चे रोज अमृत वेले उठो, बाबा को याद करो। जिसको हम बहुत समय से सुनते आ रहे हैं, हमारे देश का ही कहावत है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जो जल्दी सोता है, जल्दी उठता है, वो धनवान भी बनता है, बुद्धिमान भी बनता है, स्वास्थ्यवान भी बनता है। ये कहावत है, बहुत प्राचीन कहावत है, जो बाबा दोहरा रहे हैं। आज जो गांव में भी चेंज हो गया है, शहर की बात तो छोड़ दो, मैं बचपन में, मुझे याद है, मेरे पिताजी 4 बजे से पहले उठा दिया होंगे, उन दोनों में घड़ी फड़ी तो थी नहीं, एकदम अंधेरा था, होता था तो भी उठा देते थे, उठो उठो उठो, जागो जागो। उठ के पहले हम भजन करते थे, प्रार्थना करते थे, फिर नहाना धोना कंपल्सरी था। मेरे ग्रैंडफादर तो हमारे घर में 5 बजे के बाद कोई सो ही नहीं सकता, इतना बड़ा डंडा लेके आते थे, सोए दौड़ गया। आज देखो मां बाप ही 8 बजे तक सोते हैं तो बच्चों का क्या हाल होगा। आज साइंटिस्ट कहते हैं रात को 10 बजे सो जाओ, 4 बजे उठो, जो बाबा ने हमको 80 साल 85 ईयर्स पहले से बाबा ने बताया है कि बच्चे पांडव भवन में अभी भी जाओ देखना, वहां जो दिनचर्या लिखा हुआ है 10 बजे गुड नाइट, 3:30 बजे उठ जाओ। आज साइंटिस्ट कहते हैं जो 10 बजे रात को 10 बजे से सवेरे 4 बजे के बीच में जागता है उसको बीपी बढ़ेगा, हार्ट की बीमारी होगी, डायबिटीज हो गया, सब होगा, क्योंकि उनके बॉडी का स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत एकदम सर्ज कर जाते हैं। तो बाबा की श्रीमत है, अगर हम रात को देर आज हमारे बच्चे देखो मेरे हमारे पास यहां हॉस्पिटल में कितने पेशेंट्स आते हैं, मां बाप बच्चों को लेकर आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब ये रात को 2 बजे तक तो सोते ही नहीं है, लगे रहते हैं कंप्यूटर में मोबाइल में, 2 बजे सोएंगे, 10, 11, 12 बजे उठेंगे, फिर उनकी दिनचर्या उल्लू की तरह जीवन। मैं गया था उल्लासनगर, वहां डायबिटीज का प्रोग्राम था, तो वहां रात को 1 बजे ट्रेन से उतरा, तो गाड़ी लेने आई थी सेंटर जाने के लिए, देखा कि रास्ता पूरा एकदम दुकान बाजार सब खुला है, पूरा सब इतने चहल पहल। मैं बोला कि ये दिन का 1 बजा कि रात का 1 बजा है, क्योंकि लोग भेलपुरी खा रहे हैं, पानी पूरी खा रहे हैं, सब 1 बजे रात को। मुझे पता चला कि वहां 3-4 बजे तक दुकान सब खुला रहता है रात को, फिर खा पी के लोग सोते हैं, 12 बजे उठेंगे फिर दुकान खुलेंगे, क्या होगा। तो हमारी बहन जी कह रही थी यहां आंख बंद करके ऐसे एक पत्थर फेंक दो जिसके शरीर में लगेगा उसको डायबिटीज होगा, ब्लड प्रेशर होगा, हार्ट की बीमारी होगी, सब होगा। तो आज साइंटिस्ट भी कह रहे हैं, तो बाबा कहते हैं बच्चे जल्दी सो जा, जल्दी उठो। हमारी जितने भी दादियां देखो, जगदीश भाई जी भी मीटिंग करते थे, रात को लेट होता था, कहते थे 10 करो बस 10 करो बस। तो ये नियम हम पक्का करें, मैक्सिमम। बाबा के अभ्यक्त बाप दादा के महावाक्य है, बाबा ने कहा है मैक्सिमम 11 बजे मैक्सिमम, उसके बाद नहीं, तो जल्दी सो जाओ जल्दी उठो। ये पहला नियम है स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल का, ये फर्स्ट कदम है। सेकंड, आज डॉक्टर्स भी सदा निरोगी बनने के लिए क्या कहते हैं, हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट खाओ, हेल्दी डाइट खाओ तो हेल्दी रहोगे। तो बाबा भी हमें क्या सिखाते हैं, हमारा तन के लिए भोजन क्या है, मन के लिए भोजन क्या है। आज लोग रेस्टोरेंट में जाके क्या क्या खाते हैं, बड़े बड़े शहरों में आप सभी देखे होंगे, सारे गंद खा रहे हैं, केमिकल्स कितना, प्रेजर्वेटिव कितना, आर्टिफिशियल कलर्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, नाइट्रेट्स, केमिकल्स, क्या क्या नहीं है उसमें, खाली गंद, हाई कैलोरी डाइट खाके सब बीमारियों को इन्वाइट कर रहे हैं। क्यों खाए, हमारे देश का गायन है दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। मैं आपको गारंटी देता हूं, सिंपल, मैं हमारे मधुबन में जो बनता है, मैं बाहर का कोई कुछ हम तो खाते ही नहीं, बाबा के घर में जो बनता है रोटी सब्जी दाल चावल खाओ, कोई बीमारी होगी तो मुझे बता देना, कुछ नहीं हुआ। हम ये जीव के स्वाद के बस क्या क्या खा जाते हैं फिर सब बीमारियां शुरू होती है। सिंपल, रोटी सब्जी दाल चावल खाओ, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी, सिंपल भोजन हमारा हो। और कभी भी एकदम आकंठ भोजन नहीं होना चाहिए, पेट का 1/3 खाली होना चाहिए, क्योंकि जो योगी है, बाबा योगी का लक्षण आप तो श्रीमद् भगवत गीता भी पढ़ोगे तो उसमें भी वर्णन है, जो योगी है उसका क्या निशानी है, जो योगी है वो स्वल्पाहारी होता है, अति आहार अनाहार योगी का लक्षण नहीं है, श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए, अति आहार अनाहार माने उपवास करना ये भी योगी का लक्षण नहीं है, मिला तो एकदम ब्रह्मा भोजन खा गया पूरा आकंठ भोजन आ करने से दिखेगा, वो भी गलत है, और 2-3 दिन भूख हड़ताल करके उपवास करना वो भी ठीक नहीं। कई लोग कहेंगे आपको हफ्ते में 1 दिन उपवास करना हेल्थ के लिए ठीक है, भगवान ने नहीं कहा, ये मनमत है, मनुष्य मत है, शास्त्र मत है, शरीर को क्यों उपवास करें? उस दिन जिस दिन उपवास करते हो फिर बाबा को भोग नहीं खिलाओगे? बाबा को नहीं खिलाओगे क्या? बाबा ने किसी भी मुरली में कहा है क्या 7 दिन में 1 दिन उपवास करो? क्यों उपवास करना है? बाबा को अगर रोज आप भोग लगाते हो तो क्यों उपवास करना है? बहुत लोग आपको बताएंगे उपवास करो, नहीं भगवान उपवास नहीं है कहीं भी, नहीं ना गीता में है ना बाबा भी हमको सिखाया। आप कई लोग कहते हैं 12 बजे तक पानी नहीं पीना है, दिन में 2 बार खाना है। मधुबन में स्वयं भगवान आके 4 बार खाने का सिस्टम बनाया है। सवेरे 8 बजे तक नाश्ता रेडी, 12-1 बजे तक लंच रेडी, शाम को 5 बजे हल्का फुल्का कुछ ना कुछ नाश्ता रेडी, मुरमुरा है कुछ भी थोड़ा, रात को 8 बजे तक डिनर रेडी। भगवान को नहीं पता है क्या? 4-4 बार नहीं खाना है, 2 बार खाओ। अरे भगवान हमको 4 बार खिला रहे हैं, क्यों तुम जो लंबे समय तक खाली पेट रहता है उसको इतनी भूख लगेगी फिर खाने बैठा तो इतना खा जाएगा, फिर वेट भी बढ़ेगा शुगर भी बढ़ेगा। जो 2 बार खाते हैं वही लोग मोटे हो जाते हैं, जो कम कम 4 बार खाते हैं कभी मोटे नहीं होते। तो उपवास नहीं करना है, बाबा के घर में जो नियम जैसा बाबा ने बनाया है वही फॉलो करना, वही श्रीमत फॉलो करना है। हम उल्टा पुल्टा करेंगे खुद बीमार होंगे। बहुत बहने में सेंटर जाता था, इधर उधर देखता था, भूख हड़ताल करते 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 2 साल तक बिना खाए 12 बजे तक पानी भी नहीं पियेंगे, चेहरा देखो तो ऐसा उतरो। 10-15 किलो कम कर दिए 2 साल में। फिर जैसे नॉर्मल खाना पीना शुरू किए 2 महीने में 15 किलो फिर बढ़ गया। ये गलत काम नहीं करना है, बीमारियां आएगी, बहुत प्रकार की डेफिशिएंसीज होगी, विटामिन की कमी हो जाएगी। सिंपल योगी का भोजन, हमारे भोजन में अनाज कम हो, अनाज ज्यादा खाएंगे, चावल चपाती ज्यादा खाएंगे तो सुस्ती आती है। जो बहुत हार्ड वर्क करते हैं वो ज्यादा खाएंगे चलेगा। अगर हम बहुत हार्ड वर्क नहीं करते हैं तो हमारे भोजन में अनाज थोड़ा कम हो, साग सब्जियां फ्रूट्स ज्यादा हो, बहुत अच्छा। बहुत लोग मिल्क प्रोडक्ट भी नहीं खाते हैं, नहीं खाना बिल्कुल। फिर बहनें खास करके, उनके तो कैल्शियम कम हो जाता है, फिर हड्डियां दुखती है, जरा सा गिर गए फ्रैक्चर हो जाता है। अभी भी मधुबन में दूध मिलता है, अगर जैसे बाबा ने हमको प्याज लहसुन मना किया था तो हम नहीं खाते हैं। बाबा ने कभी कहा दूध नहीं पीना है, दूध नहीं पीना है? ये मनमत है, मनुष्य मत है, भगवान की मत नहीं है। हाँ आजकल क्या होता है, नकली दूध मिलते हैं, सावधान। अगर आप जानते हैं कहीं ठीक दूध है, हमारे बहुत सारे रेटेड सेंटर है, अपने गाय हैं, जानते हैं किसी कहाँ गाय अच्छे, तो गाय का दूध सबसे अच्छा है। बाबा भी गाय रखे थे, बाबा भी पीते थे दूध। हमें बाबा को फॉलो करना है, फॉलो ब्रदर सिस्टर नहीं, फॉलो फादर। बहुत लोग बहुत बातें सुनाएंगे आपको, नहीं सुना, मैं तो कहूंगा अभी सारे कल्प में और ऐसा समय नहीं आएगा जो भगवान से सुनने के लिए मिलेगा। एक ही समय है भगवान से सुनने का अवसर है। मेरे भाई और बहनों, मैं तो कहता हूं सिंपल मुरली सुनो, साकार मुरली और अव्यक्तवाणी पढ़ो, बस। और कुछ करने की जरूरत नहीं। हम यहां मधुबन में, मैं पिछले 30 साल में, हम लोग डेली एक अव्यक्त मुरली रोज पढ़ते हैं। सारी अव्यक्त मुरलियां 10 बार पढ़े होंगे। बाबा की सारी अव्यक्त मुरलियां आप पढ़ लोगे, आपको कुछ भी किसी को पूछने की जरूरत नहीं। योग कैसे लगाएं, ज्ञान मनन कैसे करें, सेवा कैसे करें, कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं। बाबा ने क्या नहीं बताया, सब कुछ सुप्रीम टीचर ने सब कुछ बता दिया, सिखा दिया है। तो इसलिए हमें भोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, कम कम खाएं, 4 बार खाएं मिनिमम। और जो डायबिटीज जिसको है तो उनको तो 4 बार खाना बहुत जरूरी है, नहीं तो जो दवाई लेते हैं, इंसुलिन लेते हैं, उसका असर 24 घंटा रहता है। आप 4 घंटे से लंबे समय खाली पेट रहोगे तो शुगर लो हो जाएगा, हाथ पांव कांपने लगेगा, अंधेरा अंधेरा लगेगा, हाइपोग्लाइसिमिया हो जाएगा, बेहोश हो जाओगे। तो हेल्दी रहने के लिए भगवान ने कहा है 4 बार खाओ, कम कम खाओ 4 बार खाओ। रात को सोते समय 1 कप दूध पियो मलाई निकाल के। मन का भोजन क्या है, ये तो तन का भोजन बताया, और बाहर का बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आजकल चलता है मशीन मेड है ना, नॉन टच टेक्निक से बनता है, आइसक्रीम भी खा लेते हैं लोग, बिस्किट भी खा लेते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं। जानते हो बिस्किट में कितने ट्रांसफैट होता है, हार्ट अटैक होता है, बिल्कुल नहीं लेना। बाहर की चीजें बिल्कुल नहीं, सेफ्टी नहीं है। खुद ही बनाओ, खुद ही घर में खाओ, जो भी हो सिंपल बनाए खाओ, कोई बीमारी नहीं होगी। तो मन का भोजन क्या है? तन का भोजन तो ठीक है, मन का भोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं थॉट्स आर द फूड फॉर द माइंड। मन का भोजन हमारी सोच विचार। बाबा कहते हैं अगर सदा निरोगी रहना चाहते हो मेरे बच्चे सदा खुश रहो। खुशी जैसे खुराक नहीं कहलाता है, जो खुश रहता है उसको कोई बीमारी नहीं होगी, गारंटेड है। देवताओं के चेहरा देखो कैसे हैं, सदा एकदम प्रसन्न, इसलिए कोई बीमारी नहीं उनको। आज चेहरा कैसा है? बाबा प्रत्यक्ष कैसे होंगे? हम ज्ञान सुनाने से कभी नहीं, कभी नहीं। बाबा प्रत्यक्ष होंगे हमारे सकल सूरत से, हम हमारे खुशनुमा चेहरे से। अंत में जब चारों तरफ हाहाकार होता रहेगा, बाबा के बच्चे मुस्कुराते रहेंगे, देखिए इनको क्या मिला। हम कहेंगे भगवान मिला, और चेहरा ऐसा, कौन मानेगा भगवान मिला है हमको? चेहरा सदा खुश। जब खुश होते हैं देखना आपका बीपी, आपका शुगर, आपका सब सब नॉर्मल हो जाएगा। जब टेंशन करते हैं सब सुट कर जाता है। तो जो सदा खुश रहना सीख गया वो जीवन जीने की कला सीख गया, जो बाबा हमें सिखाते हैं। कैसे खुश रहेंगे? खुश रहने की विधि है बाबा की बातों को संस्मरण करना। जैसा सोचोगे ऐसा बनोगे। मन में जैसा सोच चलता है चेहरा ऐसा होता है। अगर बहुत अच्छी अच्छी बातें मन में याद आ रहा है तो चेहरा एकदम खिला हुआ, अगर व्यर्थ बातें नेगेटिव बातें मन में आता है तो चेहरा उदास। तो सारा दिन जो स्वचिंतन करता है, शुभ चिंतन करता है, परमात्मा चिंतन करता है, उसका मन सदा गदगद प्रफुल्लित आनंदित हो रहेगा, खुश रहेगा, नशे में रहेगा। तो मन का भोजन है हमारा चिंतन, जिसके आधार से खुशी होती है, और खुशी ही खुराक है। जो खाली खुश रहता है वो तन से मन से सदा ठीक हो जाएगा। देवताएं 21 जन्म निरोगी इसलिए रहते थे। तो बॉडी के लिए बताया अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, दूसरी बात बताया हमारा डाइट, मन का भी डाइट और तन का भी डाइट, ये दोनों फॉलो करो। और डॉक्टर्स कहते हैं कि एक्सरसाइज करो। आज जमाना है एक्सरसाइज का, क्योंकि फिजिकल वर्क इतना है नहीं, विज्ञान के साधन इतने हो गए हैं कि हमको कोई फिजिकली मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ रहा है। तो सभी सिडेंटरी हो गए हैं, जिसके कारण बीमारियां फैल रही है। तो बाबा कहते हैं बच्चे हड्डी हड्डी सेवा करो, यज्ञ सेवा करो। मुझे याद है एक बार हमारे टीचर बहनें सब आए थे, हमारी दादी प्रकाशमणी, मैं वहां बैठा था, दादी प्रकाशमणी को कहते दादी आप थोड़ा हमें छुट्टी दो तो हम रोज क्लास में एक्सरसाइज करेंगे बहनें सब। दादी ने कहा चुप, आज से सेंटर के जितने भी रखे हो नौकर चाकर सबको छुट्टी दे दो, झाड़ू पोछा खुद लगाओ, सब बर्तन वासन सब खुद करो, सब मेहनत करो। तो जितना हड्डी हड्डी यज्ञ सेवा करेंगे, कोई अगर इतना बड़ा रूम अगर पोछा लगाता है झाड़ू लगाता है ऑटोमेटिकली पतला हो जाएगा, बैठेगा तो अपना पेट ऑटोमेटिकली छोटा कम हो जाएगा। तो हम मेहनत कम करते हैं। बाबा कहते हैं यज्ञ सेवा, हड्डी हड्डी दधी चीरी सी जैसा हड्डी हड्डी सेवा करो। फिर भी शरीर को हेल्दी रखने के लिए एक्सरसाइज करना जरूरी है। दुनिया में बहुत प्रकार के एक्सरसाइज लोग सिखा रहे हैं, ये सब हमारे बस की भी बात नहीं है और जरूरी भी नहीं है। बाबा कहते वो हठ योगी क्या क्या सिखाते, तुम्हारे माताओं की तुम्हारे बस की बात नहीं है, आप हो राजयोगी। आप सभी के लिए बहुत सुंदर हेल्दी रहने के लिए क्या एक्सरसाइज करें आप यूट्यूब में ढूंढिए। अभी तो डेली लाइव चलता है, हम हॉस्पिटल में भाई बहने कर रहे हैं डेली सवेरे 6 से 6:30 आधा घंटा के लिए डेली लाइव चलता है, बाबा के गीतों के साथ सिंपल एक्सरसाइज, मन का और तन का एक्सरसाइज। आप यूट्यूब सर्च कीजिए डेली एक्सरसाइज फॉर हेल्दी लाइफ बाय डॉक्टर श्रीमंत, आप मिल जाएगा देखना। आप लिंक जुड़ जाइए, आप डेली आपको आएगा, ऑनलाइन आप कर सकते हो, बाद में भी रिकॉर्डेड है आप देख के कर सकते हो। होल बॉडी का सिंपल घर में बैठ के बिना कोई साधन लिए हुए बाबा के गीत के साथ गुनगुनाते हुए बाबा के गीत खुश रह के आप कर सकते हो, देखना एकदम फिट रहोगे। हमारे हॉस्पिटल कितने भाई बहने उनका 5-5 किलो 7-7 किलो 2-3 महीने में कम हो गया, सारे ज्वाइंट स्टिफनेस सब ठीक हो गया। सिंपल एक्सरसाइज बाबा भी कराते थे, बाबा भी दादियों को पहाड़ी चढ़ाने लेके जाते थे, आप देखो हिस्ट्री हॉल जाके देखो सारा चित्र है। तो तन का कुछ ना कुछ थोड़ा सा करना, सारा जॉइंट्स को एक बार मोबिलाइज कर देना, क्योंकि शरीर एक गाड़ी है, इसको ठीक रखना मेंटेन करना जरूरी है। तो तन के लिए तो थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, बाबा के गीतों के साथ करो, गुनगुनाते हुए, वो योग है। कई लोग कहते हैं एक्सरसाइज क्या करना, देह अभिमान आ जाएगा। बीमार होंगे तो ज्यादा देह के बारे में सोचना पड़ेगा, देह अभिमान आएगा। बाबा के गीत को गुनगुनाते हुए शरीर का एक्सरसाइज करते हो तो वो योग है। मन का एक्सरसाइज क्या करें, मन को भी हेल्दी रखने के लिए, जैसे मन को भी तन को भी दोनों को हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज, जैसे शरीर को चाहिए मन को भी चाहिए एक्सरसाइज। और मन का एक्सरसाइज बाबा ने हमें क्या कहा, रूहानी ड्रिल। रूहानी ड्रिल है मन का एक्सरसाइज, रूहानी ड्रिल। अभी अभी साकारी स्वरूप में, अभी अभी आकारी फरिश्ता रूप में, अभी अभी निराकारी मूल वतन में बिंदु रूप, अभी अभी निर्विकारी देवात्मा रूप। जब चाहो मन बुद्धि को एकाग्र कर लो, एक स्वरूप में एकाग्र हो जाओ। जैसे फिजिकल ड्रिल करते हैं, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, पीटी करते हैं ना, सिखाते हैं स्कूल के बच्चों को, ऐसे ही यहां भी ये मन का ड्रिल है, एक दो तीन चार, साकारी आकारी निराकारी निर्विकारी, साकारी आकारी निराकारी निर्विकारी। और जो निर्विकारी देवात्मा स्वरूप होगा, वही हमारा द्वापर युग में हमारी मूर्ति बना के वही पूज्य स्वरूप, पूजनीय स्वरूप होगा। आप अनुभव कीजिए, अभी अभी में ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण, परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना, मैं ब्राह्मणात्मा हूं, इस आकार शरीर में भ्रुकुटि के बीच में मैं चमकता हुआ एक दिव्य सितारा, मैं बाबा के साथ मम्मा के साथ तपस्यारत हूं, विश्व कल्याणकारी हूं। एक सेकेंड में इमर्ज कीजिए, मैं सूक्ष्म वतन में एकदम एक लाइट के कार्ब में, मेरे मस्तक के चहुं और एक सुंदर पवित्रता का प्रभाव मंडल है, सुंदर ज्ञान योग के पंख है, मेरे मस्तक ज्योति चमक रही है, वरदहस्त से वरदानों की किरणें निकल रही है, मैं प्रभु संदेश वाहक, मैं ये फर्श की दुनिया से ऊपर अर्श निवासी, मैं एक फरिश्ता हूं, फरिश्ता हूं। फिर एक मिनट में उड़ जाइए एकदम मूल वतन, जहां ना साकारी शरीर है ना आकारी शरीर है, मैं एक चमकता हुआ दिव्य सितारा, एक डिवाइन पॉइंट ऑफ स्पार्कलिंग लाइट हूं। जैसे बाबा एक चमकता हुआ ज्योति है, मैं भी ऐसा दिव्य ज्योति हूं, निराकार हूं। फिर एक मिनट में स्वर्ग में संपूर्ण सत्वप्रधान सृष्टि में मैं संपूर्ण निर्विकारी देवात्मा हूं, एक स्वर्णिम रत्न जड़ित ताज, एक पवित्रता का ताज, डबल ताजधारी, मस्तक पर विजय का तिलक, वैजयंती माला, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए अलंकारी स्वरूप, संपूर्ण निर्विकारी विश्व का मालिक मैं चतुर्भुज विष्णु। इमर्ज कीजिए उस दृश्य को। तो साकारी आकारी निराकारी निर्विकारी, साकारी आकारी निराकारी निर्विकारी, ये ड्रिल करिए। बाबा ने कम से कम 25 मुरलियां होगी जो बाबा ने कहा, बच्चे तुम कितना भी ज्ञान का मनन चिंतन किए हो, भाषण किए हो, सेवा केंद्र खोले हो, तन मन धन से सेवा किए हो, अंत में अगर ये रूहानी ड्रिल नहीं किए हो, स्पिरिचुअल ड्रिल, अंत में फेल हो जाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी टाइम मिले ये ड्रिल करते रहो, फिट रहेंगे एकदम, मन से फिट, मन से दुरुस्त, तन से भी दुरुस्त हो जाएंगे। तो जैसे डॉक्टर्स कहते हैं शरीर के लिए हेल्दी डाइट खाओ, एक्सरसाइज करो, मन के लिए भी बाबा हमें सिखाते हैं, मन का भोजन है पॉजिटिव थॉट्स, सदा खुश रहना, और मन का ड्रिल है रूहानी ड्रिल, जो दुनिया में कोई डॉक्टर आपको नहीं सिखा सकता है, सुप्रीम सर्जन बाबा हमें सिखा रहे हैं। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आज बीमारियों का जो कारण है, बहुत सारे अनेक कारण डॉक्टर्स आपको बताएंगे, लेकिन बाबा ने हमको बताया है देर आर 7 एविल्स एंड 7 डेविल्स, 7 डेविल्स हैं, 7 एविल्स हैं, ये सब मनोविकार के कारण है, मनोबीमारियां हैं, ये मन की बीमारियों का ही कारण है। क्या क्या 7 एविल्स क्या है? बाबा कहते हियर नो एविल, सी नो एविल, टॉक नोविल, थिंक नोविल, डू नोविल, पांच हो गए और दो, सी नोविल, हियर नोविल, टॉक नोविल, थिंक नोविल, डू नोविल, ईट नोविल, रीड नोविल। आजकल इतने आलतू फालतू चीजें पढ़ते रहते हैं लोग, दिमाग खराब उनका, कुछ भी नहीं पढ़ना बाबा के सिवा। एक ही समय मिला है, तुम ही से सुनो, तुम्हारा ही सुनो, बस। तो ये सेवन एविल्स है, इससे बचना है। और सेवन डेविल्स है, सेवन डेविल्स कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य और भय। आलस्य को छठा विकार कहा जाता है, भय भी एक विकार है। ये सेवन डेविल्स है, इससे भी बचना है। यही मनोविकार पैदा करते हैं, मन की बीमारियां पैदा करते हैं। तो इस सातों एविल्स और सातों डेविल्स से कैसे बचे, यही हमें रोगी बना देते हैं और मौत की सजा देते हैं। इसलिए देखो श्रीमद् भगवत गीता पढ़ो, उसमें लिखा है, भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, तीनों आदि मध्य अंत तुमको दुख देता है। जो काम कामी होता है, कामुक होता है, हमेशा रोगी होता है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में है, कामात संजायते क्रोध, क्रोधात भवति सन्मोह, सन्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंसात प्रणश्यति। अर्थात काम से, काम जब हमारी कामना पूरी नहीं होती, क्रोध पैदा होता है। कामात संजायते क्रोध, फिर क्रोध से मोह होता है, मोह से बुद्धिनाश होता है, बुद्धिनाश से सर्वनाश होता है। भगवान वाच। तो हम ये सब आज घर घर में जो इतनी अशांति, दुख, कलह, क्लेश, क्या है, सब कुछ है लोगों के पास, लेकिन घर में मन की शांति नहीं, आपस में संबंधों में कैसा है आप देख रहे हो, जिसके कारण दुखी है सब, बीमारियां भी, इसके कारण डायबिटीज, ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो बाबा हमें ये सेवन एविल्स और सेवन डेविल्स से बचने के लिए बहुत एक सुंदर विधि बताए, जो सेवन वर्च्यूज है, सात गुण है, आत्मा का अनादि गुण सात गुण है। क्या क्या? ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद और शक्ति। ये सेवन पिल्स है, ये सेवन पिल्स खाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये सब डेविल्स और एविल्स के प्रभाव से बच जाएंगे। इसका अभ्यास करना पड़ेगा। सात दिन है, एक पिल एक दिन खाओ। सोमवार को बाबा सोमनाथ है, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, सोमरस पिलाने वाला बाबा। मंगलवार विष्णु मंगलम कहते हैं, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं। जब ज्ञान स्वरूप हो जाता है, ऑटोमेटिकली जीवन में पवित्रता आती है। पवित्रता ही सुख शांति की जननी। तो बुधवार को सुख स्वरूप, गुरुवार को बृहस्पति दशा आई, जीवन में शांति होगी, शांत स्वरूप। शुक्रवार प्रेम स्वरूप, शनिवार सब दशा मिट गए, आनंद स्वरूप, संडे को सूर्य समान शक्ति स्वरूप। तो सात दिन में सात गुण को बार बार बाबा हमेशा, दादियां कहती थी, बाबा हमको कहते थे, बच्ची जाओ वहां बैठ जाओ, एक घंटा अपने को अनुभव करो, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा। बाबा ये ड्रिल कराते थे पहले, सात सात दिन भी देते थे, महीना महीना तक भी देते थे। अभ्यास करें, इसका स्वरूप बने, ऑटोमेटिकली सब खत्म हो जाएंगे। और बाबा हम सभी को एक पिल खिलाते हैं, जिससे 21 जन्म निरोगी बनेंगे। वो पिल कौन सी है? वो पिल है प्यूरिटी, पवित्रता। मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, स्वपन, सब में स्वच्छता। छह बातें, मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, स्वपन, ये छह बातों में संपूर्ण स्वच्छता ही पवित्रता है। मन में भी जरा किसी के प्रति शुभ भावना, अशुभ भावना, अशुभ और भावना समाप्त, सबके प्रति भला सोचना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मन में सबके प्रति शुभ विचार। वचन भी कभी भी कैसे ज्ञान अनुकूल वचन ही हमारे मुख से ज्ञान रतन ही निकले। तो स्वच्छता बिल्कुल, आज हमारे जीवन में बाबा हमको बचा दिए। मैं बता रहा हूं, दुनिया में देखो गंद ही गंद है, कुछ भी कहीं भी जाओ, कुछ भी अखबार पढ़ो, टीवी देखो, जहां देखो, मूवी देखो, क्या है? सब काम क्रोध है, और क्या है? सब गंदगी है। ये सब देह अभिमान की तरफ हमको उकसाने वाले, फुल स्टॉप। संपूर्ण स्वच्छता। बाबा पवित्रता को जीवन में अपनाकर एक पवित्र दुनिया स्थापना करने के लिए आए हैं। पवित्रता का सहयोग ही सर्वश्रेष्ठ सहयोग है। जो बाबा के पवित्र बच्चे हैं वो कुछ भी नहीं करें, खाली पवित्र रहें, तो भी बाबा उनको सत्ययुग में बहुत ऊंच पर देगा। तो जीवन में पवित्रता को कभी कुछ भी हो जाए, इसके लिए कहा जाता है धरत पर ये धर्म न छोड़िए। स्वधर्म में निधन श्रेय पर धर्म भयावह। तो ये हमारा स्वधर्म है पवित्रता, प्यूरिटी, कुछ भी हो जाए। और इसको अपनाने की एक ही मात्र विधि है, सभी को बाबा के बच्चों की नजर से देखो। ये सब मेरे भाई बहने हैं, वसुधैव कुटुंबकम, सब मेरे लौकिक भाई से भी, अपने अलौकिक परिवार में जितने भाई बहने हैं ये मेरे भाई बहने, मेरी सगी भाई बहने से भी ये ज्यादा प्रिय है, क्योंकि इनके साथ जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। बाकी लौकिक संबंध तो एक जन्म का है। तो सभी को जब तक हम ये मेरे पूरा अपने भाई बहने अपने परिवार की दृष्टि से नहीं देखते हैं, पवित्र रहना मुश्किल है आज की दुनिया में। और अन्नदोष और संगदोष, ये दोनों ही हमें पवित्र रहने नहीं देते, ये दोनों से बचना पड़ेगा। अन्नदोष और संगदोष, जैसा अन्न ऐसा मन होगा, ऐसे फिर पतन होगा, और जैसा संग होगा ऐसा रंग चढ़ेगा। तो हमें संपूर्ण पवित्रता, जो प्यूरिटी में पास हो गया वो परम धाम में भी बाबा के पास रहेगा। जैसे बाबा परम पवित्र है, जो परम पवित्र बच्चे ही बाबा के एकदम नजदीक पहुंचेंगे और सत्ययुग में एकदम शुरू से आके श्रेष्ठ पद के अधिकारी होंगे। हमारी पढ़ाई का सार दो गुण है, पवित्रता और संतुष्टता। जीवन में आप पवित्र हो गए, बस बाबा हमको पवित्र बनाने के लिए इतनी पढ़ाई, इतने योग तपस्या, इतनी साधना, इतनी भट्टी, इतनी सब करा रहे हैं। सेवा तो एक अपने को बिजी रखने के लिए, अगर सेवा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, व्यर्थ बातों में खाली मन शैतान का घर। बाबा हमको सेवा कर रहे हैं, करा रहे हैं, दूसरों से दुआएं मिले, हम बिजी रहें, व्यर्थ बातों से बचे। परंतु जीवन की धारणा पवित्रता, जो पवित्रता में सेवा भले नहीं किया है लेकिन खाली पवित्र रहा है तो भी उच्च पद मिलेगा। और संतुष्टता, अंत तक बाबा कहते जो ज्ञान योग धारणा सेवा है उसमें धारणा सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। कितने भी भाषण किए हो, कितना भी कुछ किए हो, ये तो एक जिसकी बुद्धि थोड़ी सालिम है, इधर उधर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके बहुत सुंदर बोलने में मिठास है, बहुत सुंदर भाषण कर देते हैं, लोग प्रभावित है, वाह, लेकिन उनके व्यवहार जीवन देखो, अगर व्यवहार में हमारी स्थिति, हमारी अवस्था ठीक नहीं है तो उच्च पद नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। बाबा हमें धारणा मूर्त बनाने के लिए शिक्षा दे रहे हैं। तो ज्ञान योग हमारी साधना है, परंतु धारणा स्वरूप देवताओं जैसा सर्वगुण संपन्न बने, सोलह कला संपूर्ण बने, संपूर्ण निर्विकारी बने, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परम धर्म, इच्छा मात्रम अविद्या, संपूर्ण जीवन मुक्त देवी देवता, ऐसा बनना है हमें। तो धारणा स्वरूप बन के ऐसा बन सकते हैं। फिर जो धारणा मूर्त होगा ऑटोमेटिकली सेवा करेगा, जहां जाएगा कदम में सेवा होगी, फरिश्ता बन ही जाएगा। तो हम अगर पवित्रता की धारणा और संतुष्टता की धारणा, भगवान को पाने के बाद भी संतुष्ट नहीं तो कब संतुष्ट बनेंगे, स्व संतुष्ट, हमसे सभी संतुष्ट, हम सबसे संतुष्ट, तो बाबा भी हमारे ऊपर संतुष्ट। लास्ट में बाबा तीन सर्टिफिकेट देखेंगे और लास्ट में बाबा एक पेपर लेंगे, कुछ नहीं पूछेंगे, अंत में एक ही पेपर सबके लिए आएगा, वो है अशरीरी भव। एक सेकेंड में शरीर को भूल गया, पास, नहीं तो यहां रह जाएंगे। जो शरीर को भूल गया बाबा के साथ उड़ जाएगा, नहीं तो चिल्लाता रहेगा, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हम रह गए अकेले। तो आप सभी आए हो भाई बहने, यहां जितना समय भी बैठते हो भट्टी में, ऐसा अनुभव हो ऐसा शरीर है ही नहीं, बिल्कुल मैं एक लाइट हूं। पहले तो ज्ञान सरोवर नहीं था, कुछ नहीं था, तब मधुबन में जब भट्टी होती थी, हमारी दादियां संदली में बैठती थी, ऐसा पावरफुल योग करा देती, एकदम देह है कि नहीं भूल जाते थे। दो तीन दिन इतना खाओ तो ऐसा लगता था जैसे पेट भर गया, एक घंटा सो जाओ एकदम बिल्कुल एकदम नींद पूरी हो गई, एकदम जैसे उड़ रहे हो, पांव जमीन में नहीं है, ऐसा लगता था पहले जब भट्टी होती थी। तो आप सभी आए हो इतना दूर से, सब लोग की छोड़ के अच्छी तरह से अशरीरीपन का अभ्यास करते जाओ, पवित्रता का फाउंडेशन पूरा पक्का करके जाओ। प्यूरिटी ओनली पिल जो 21 जन्म निरोगी बनाएगा हमको, और संतुष्टता की धारणा से उच्च पद मिलेगा। यहां जो जितना स्वयं संतुष्ट रहेगा, सबको संतुष्ट, जो बहुतों के दिल पर राज करेगा वो जाके राजा बनेगा, जो यहां स्वराज्य अधिकारी बनेगा वो राजा बनेगा। हम नहीं तो सेवा करेंगे बहुत और स्वराज्य अधिकारी नहीं, बहुत लोग हमसे डिस्टर्ब हैं, तो वहां देखना प्रजा बनाएंगे हम, राजा दूसरा कोई बैठा होगा। इसलिए ये जीवन की धारणा बहुत जरूरी है, तो ही हम बाबा हमें 21 जन्म तक उच्च पदवी देंगे, निरोगी बनाएंगे। ओके, मुझे कहा गया था 6:15 तक टाइम हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाई बहने, बहुत अच्छी तरह से सुने। आप सभी सदा के लिए निरोगी रहे, यही मेरी शुभकामना। सदा चुस्त रहो, फुर्त रहो, उड़ते रहो, बाबा का नाम वाला सब करो। थैंक यू। करें देखो जैसी इच्छा, अभी भट्टी में आए हैं, एक्सरसाइज क्या करें, ऑनलाइन में सब मिल जाएगा सबको। आप यूट्यूब में सर्च करो डेली एक्सरसाइज फॉर हेल्दी लाइफ बाय डॉक्टर श्रीमंत, आप मिल जाएगा, आप उसमें सब्सक्राइब कर दो, आपको आता रहेगा। करना है एक्सरसाइज? अच्छा चलो, आप जैसे चाहो, आपकी इच्छा है, आप करना चाहते तो। चलिए सब खड़े हो जाएं, फिर खड़े होके करेंगे वो गीत जो शिव पिता लेने आए हैं। ठीक है, बहुत सिंपल, सबसे सुंदर एक्सरसाइज है चलना। आपको बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर में ही कर सकते हो। अभी ये पीरियड में बाहर जाना भी सेफ नहीं है, घर में कर सकते हो। चलो घर में कैसे करेंगे बता देता हूं। हम जब नॉर्मली चलते हैं, हमारे हाथ का एक्सरसाइज कुछ नहीं होता है, हमारी बैक मसल्स कुछ नहीं होता है, साइड मसल्स कुछ नहीं होता है, खाली ऐसे जो कुछ नहीं करते उनके लिए चलना ठीक है, लेकिन इट इज नॉट ए कंप्लीट एक्सरसाइज। इसलिए मैं अभी साथ साथ ऐसा कराऊंगा, देखना होल बॉडी का हो जाएगा।
Baby।
बैठ जाए सभी, बहुत 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 धन्यवाद। आप देखिए 5 मिनट में होल बॉडी का एक्यूप्रेशर हो गया, आपको बॉडी मसाज करने की जरूरत नहीं। आप जब ताली बजाते हो यहां आपके हाथ में बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है, जो होल बॉडी का एक्यूप्रेशर भी हो जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा ताली बजाएंगे तो थोड़ा तेल लगा देना नहीं तो फट जाता है। तो सिंपल एक्सरसाइज जो घर बैठे कर सकते हो, बाबा की याद में बाबा की गीत के साथ एकदम फिट रहोगे। आप डेली आधा घंटा इस शरीर के लिए देना पड़ेगा। एक गाड़ी है, गाड़ी को भी आप मेंटेन करते हो, गाड़ी को मेंटेन नहीं करो खाली चलाते रहो क्या होगा, एक दिन एक्सीडेंट होगा। शरीर भी ऐसा है, ये बहुत मूल्यवान गाड़ी है, ये लास्ट जन्म है, ये गाड़ी बहुत अमूल्य है। इस गाड़ी के द्वारा ही हम पुरुषार्थ द्वारा भविष्य 21 जन्म का हम बिल्डिंग बना रहे हैं, इमारत बना रहे, फाउंडेशन है। तो शरीर को ठीक रखो, मन को ठीक रखो, और अच्छा पुरुषार्थ करके बाबा के दिल पर सब दिल तक नसीन हो जाओ चढ़कर, यही मेरी शुभकामना है। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, चुस्त रहो, फुर्त रहो, खुश रहो। ओम शांति।